जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाए, खुश रखें और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम की। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। ऑल्सो वील बी प्रोवाइडिंग यू मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड वील एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ टूडे, दैट इज 31st of December। बट बिफोर ऑल ऑफ दिस वील बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
जी हाँ, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडएक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के पीएसएलवी C60 रॉकेट को दो अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया। इससे अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन में सहायता मिलेगी। पीएसएलवी C60 रॉकेट ने SDX-01 यानी चेजर और SDX-02 यानी टारगेट नाम के दो उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। ये दोनों उपग्रह अगले 10 दिनों में अंतरिक्ष में डॉकिंग करने के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे। स्पेडएक्स मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता की उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है, जो चंद्र मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने प्रक्षेपण के बाद बताया कि दोनों उपग्रहों के पैनल सफलतापूर्वक तैनात कर दिए गए हैं। दोनों उपग्रह 20 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और फिर डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी।
I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C60 for the SpaceX mission. The rocket has placed the satellites in the right orbit. That's only one part of the mission, injection of the SpaceX satellites. The SpaceX two satellites are moved one behind the other. So over the period of time, for the days, it will pick up further distance, travel to almost a 20 kilometer distance away. And then the rendezvous and docking process will start. And we hope that the docking process can happen in another 1 week.
The 18th edition of the India-Nepal military exercise Surya Kiran will begin at Saljhandi of Rupandehi in Nepal today. The battalion-level joint military exercise focuses on jungle warfare, counter-terrorism in difficult geography, and humanitarian aid in disaster management, among others. The 11th Gorkha Rifle of the Indian Army and Sri Jung Battalion of the Nepali Army are taking part in the two-week-long training. The joint military training is expected to foster professional collaboration, friendly relations and trust between India and Nepal. The previous edition of the joint exercise was held in Pithoragarh last year.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। इससे करदाताओं को योजना में निर्दिष्ट देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। बजट में घोषित योजना का उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में सहायता करना है। इससे करदाताओं को विवादित राशि का भुगतान कर अपने बकाया पर देनदारियों का निपटान करने में सहायता मिलेगी।
The railways will run 3,000 special trains during the Mahakumbh Mela 2025, out of which 560 trains will operate on Ring Rail. The Mahakumbh will be held from 13 January to 26 February in Prayagraj, Uttar Pradesh. General Manager of North Central Railway, Upendra Chandra Joshi, told reporters that a total of 560 ticketing points are being made available at 9 railway stations in Prayagraj. These are Prayagraj Junction, Subedarganj, Naini, Prayagraj Shivki, Prayagraj Prayaggan Junction, Fafamau, Prayagraj Rambagh, Prayagraj Sangam and Jhusi, beside in the fair area. He informed that about 10 lakh tickets can be distributed from these counters per day. In view of the Mahakumbh Mela, Railways has now started the facility of issuing railway tickets 15 days in advance.
बेंगलुरु की विशेष न्यायालय ने एक बांग्लादेशी आतंकी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। डकैती, षड्यंत्र और धन वसूली के साथ साथ हथियारों की खरीद के मामले में दोषी जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर पर 57,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जांच में पता चला है कि बांग्लादेश में सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद वो भागकर भारत आ गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने बोधगया में 2018 में और वर्धमान में 2014 में हुए बम धमाकों सहित भारत में बांग्लादेश के जमातुल मुजाहिदीन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामलों की जांच में उसकी भूमिका साबित होने के बाद सजा का आदेश दिया। इसके साथ ही इन मामलों में कुल 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।
In Madhya Pradesh, in line with Prime Minister Narendra Modi's mantra of waste to gold, various products are being made from the waste material coming out of the fields. Among these products, the most prominent is the Burhanpur cap made from the waste of banana crop, which is not only loved by Indians, but now its demand has increased online in foreign countries as well. More from our correspondent.
The demand for the cap made from banana fibers of Burhanpur district is also increasing rapidly in foreign countries. So far, 10 caps have been sent to London, while 10 caps will also be sent to South Africa. The price of these caps range from 1100 to 1200 rupees. Ansuya Chauhan, who makes caps from banana fibers, says that she is earning a good income.
Banana fiber
Burhanpur collector Bhavya Mittal said that the district administration is also launching a banana crop website to sell products made from banana fiber.
महिलाओं ने स्वयं अपने माध्यम से ही लंदन तक अपनी पहुंच ली है। साथ साथ में हमने एक बाना क्राफ्ट नाम के एक ब्रांडिंग प्लान की है, जिसमें हमारे जिले में बनने वाले सभी उत्पाद को हम बाना क्राफ्ट वेबसाइट के माध्यम से बेचेंगे।
The demand for banana powder made from bananas and full of physical nutrition is also increasing rapidly. With Ganesh Babiskar from Burhanpur, Sanjeev Sharma, Akashvani News, Bhopal.
Well, cold wave conditions continue to sweep North India with temperatures plummeting across several states. As per India Meteorological Department IMD, cold wave conditions will continue in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh during next 2 days. IMD has also predicted cold day conditions in Haryana and Chandigarh today and in West Uttar Pradesh and Madhya Pradesh till tomorrow.
और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले शगुन आप बताएं चेन्नई से क्या समाचार है आपके पास।
यस मुकेश, द चेन्नई वुमेन्स कोर्ट हैज सेंटेंस सतीश टू डेथ इन द केस ऑफ किलिंग अ कॉलेज स्टूडेंट सत्यप्रिया बाय पुशिंग हर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन एट परंगमिले रेलवे स्टेशन इन 2022। जज श्रीदेवी हैज इश्यूड एन ऑर्डर टू दिस इफेक्ट यस्टरडे। कंसिडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, इट हैज बीन मेंशनड in the judgment that along with the death sentence, a fine of 25,000 rupees, 3 years imprisonment under the Prevention of Violence Act, Violence Against Women Act, and a fine of 10,000 rupees will be imposed. We have more news from Chennai. Chief Minister of Tamil Nadu M.K. Stalin has launched the expansion of Padumai Pen Scheme to benefit female students of government-aided schools in Thoothukudi yesterday. It would ensure monthly assistance of rupees 1,000. Initially, the scheme was introduced for female college students who completed classes 6 to 12th in government schools. The Padumai Pen scheme aimed to increase enrollment in higher education. Under this extended initiative, eligible students will receive a monthly scholarship of 1,000 rupees. And now, Mukesh will update us with the Delhi's.
ना दिल्ली की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बंबई के समाचारों की बात करते हैं। मुंबई पुलिस नववर्ष की पूर्व संध्या पर 14,000 से अधिक कर्मियों को तैनात कर व्यापक सुरक्षा प्रबंध करेगी। 8 अतिरिक्त आयुक्त, 29 उपायुक्त, 53 सहायक आयुक्त, 2,000 से अधिक पुलिस अधिकारी और हजारों पुलिस कर्मियों को करीब 12 प्रमुख स्थानों पर आज तैनात किया जाएगा। इसके अलावा राज्य रिजर्व पुलिस बल, त्वरित प्रतिक्रिया बल, बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड, दंगा नियंत्रण पुलिस और होमगार्ड की प्लाटून सहित विशेष इकाइयां भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करेंगी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट नए साल की पूर्व संध्या पर आज 25 अतिरिक्त बसें चलाएगा। ये बसें गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू चौपाटी, गोराई जैसी लोकप्रिय स्थानों पर जाने वाले लोगों के लिए चलाई जाएंगी। बसें आज सवेरे 10 बजे से कल सवेरे 3 बजे तक चलेंगी और प्रत्येक 45 मिनट के अंतराल पर इन बसों का संचालन होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को भावना और शब्द दोनों के साथ लागू करने को कहा है। मुंबई में कल राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में श्री फडणवीस ने अधिकारियों को स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने पर ध्यान केंद्रित करने और ईकेवाईसी प्रमाणीकरण का उपयोग करके छूटे हुए नामों को शामिल करने तथा मृतक लोगों के नाम हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के परिवहन विभाग से सड़क सुरक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा देने और 15 वर्ष पुराने वाहनों को हटाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। श्री फडणवीस ने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और शहरी हाटों की स्थापना करने का भी सुझाव दिया।
Yes, Mukesh, now let's focus on Bengaluru. In a statement issued by Chief Minister Siddaramaiah, appeals to all individuals involved in Naxal activities to surrender and reintegrate into the mainstream. He has assured that if the Naxals are willing to engage in dialogue to rejoin the mainstream, the government will welcome such efforts within the legal framework and approach the process with empathy. The statement further says that sporadic incidents of Naxal activity have been reported in the Malnad region over the past 2 decades, resulting in violence and loss of life. Such sporadic incidents have caused deaths of innocent civilians, police personnel and Naxals themselves. The statement has called upon Naxals in Karnataka to surrender completely and reintegrate into the mainstream. Saying that the government has already formulated a surrender policy for Naxals, the Chief Minister has assured that this policy will further be simplified and implemented effectively. The policy mandates that the Naxals who surrender will be offered financial assistance and will be imparted skills training along with comprehensive rehabilitation measures.
और अब बात करते हैं कोलकाता महानगर की खबरों की। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफताब का आज सेवानिवृत्ति का समय है। उनके नेतृत्व में 2019 और 2024 में दो लोकसभा चुनाव और 2021 में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुछ उपचुनाव भी उनके नेतृत्व में हुए हैं। राज्य सरकार इस पद के लिए भारतीय चुनाव आयोग से नियमों के अनुसार योग्य आईएएस अधिकारियों के नाम भेजेगी।
Now turning our attention to Hyderabad, the traffic police in Rachkonda Police Commissionerate has officially introduced body-worn cameras for its officers, aiming at modernizing traffic enforcement and fostering greater trust between law enforcement and the public. These BWCs will be worn by traffic officers while on duty, recording their interactions with the public. This initiative is designed to provide an objective record of events, significantly reducing the potential for disputes and complaints. Rachkonda Police Commissioner G. Sudhir Babu distributed the BWCs yesterday to inspectors and sub-inspectors. He said the introduction of BWCs is a landmark step in their efforts to modernize traffic enforcement and foster greater trust between the police and the public.
और अब राजधानी दिल्ली के समाचार। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री कहने को लेकर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने इस विषय पर सुश्री आतिशी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा मीडिया में आतिशी को सार्वजनिक रूप से अस्थायी मुख्यमंत्री घोषित करना अपमानजनक था। उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित महिला सम्मान योजना को रेखांकित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस तरह की घोषणाएं करने से मुख्यमंत्री के पद की गरमा धूमिल हुई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्माण और अन्य श्रमिकों, पीएम विश्वकर्मा तथा पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, ऑटो चालकों, कैब चालकों, महिलाओं, SC/ST श्रेणियों, भूतपूर्व सैनिकों, वीरता पुरस्कार विजेताओं और दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न स्थानों पर विशेष आवास योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम में 25% की छूट पर फ्लैट उपलब्ध होंगे। इस दौरान श्री सक्सेना ने कहा कि ये योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए घर बनाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में मतदाता पंजीकरण और सूची में संशोधन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 28 नवंबर 2024 के बाद से नए पंजीकरण के लिए 4,80,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने वेतन जारी करने में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कल प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा कि पिछले 17 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वे लगातार सरकार के कई अधिकारियों और नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधर पंजाब से आए 180 शिक्षकों ने भी कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनके वेतनमान के मामले में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के विभिन्न इलाकों से 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस करीब 1200 लोगों का सत्यापन कर चुकी है और भविष्य में भी इस संबंध में जानकारी मिलने पर ऐसा करेगी।
टोटल हम लोगों ने अब तक 12 बांग्लादेशी पकड़े हैं, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से हमने पकड़े हैं। कुछ निजामुद्दीन से हैं, कालिंदी कुंज और शाहीनबाग और सरिता विहार इलाके से हम लोगों ने इनको रिटेन किया है। सबके सब डिटेंशन कैंप में भेज दिए गए हैं। इतने बांग्लादेशी हमें मिले हैं, ये विदाउट आइडेंटिटी थे और कुछ लोग काफी समय से भी रह रहे थे, कुछ लोग अभी जस्ट रिसेंट भी आए थे। तो अलग अलग अवधि से ये लोग हमारे इलाके में रह रहे थे जिनको पकड़ा गया।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया था। और दिल्ली पुलिस ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी में यातायात परामर्श जारी किया है। दिल्ली यातायात पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आज रात 8 बजे से कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में नववर्ष के जश्न के समापन तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध सभी निजी और सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू होंगे। नई दिल्ली, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी।
नए साल के न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में ट्रैफिक ने एक बड़ा एलिब्रेट सा एक प्लान बनाया है और हमने इसमें एडवाइजरी भी इश्यू करी है। जैसे कैनॉट प्लेस के एरिया में 8 बजे के बाद गाड़ियों का कोई भी मूवमेंट नहीं होने देंगे, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट अलाउड होगा। और जो भी मूवमेंट 8 बजे के बाद अगर है तो कुछ लिमिटेड स्टिकर्स दिए गए हैं गाड़ियों को, जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में अगर कोई पार्टी फंक्शन है, इनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, तो उनकी तरफ से हमने स्टिकर्स इशू करवाए गए हैं। उन्हीं गाड़ियों को हम अंदर करेंगे जिससे कि हमारा ट्रैफिक कंजेशन ना हो।
पुलिस ने कहा कि मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, मिंटो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग क्रॉसिंग, गोल डाकघर, नई दिल्ली, पटेल चौक और जयसिंह रोड, बांग्ला साहिब लेन के गोल चक्कर से आगे किसी भी वाहन को कनॉट प्लेस की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कनॉट प्लेस के भीतरी और बाहरी सर्कल में केवल वैध पास वाले वाहनों को ही अनुमति होगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा है कि नए साल की पूर्व संध्या पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि आखिरी ट्रेन के प्रस्थान तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। कल औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 183 के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि कुछ इलाकों में सूचकांक 200 का आंकड़ा पार कर गया है। और देश दुनिया के समाचार हो गए शगुन
जी,
मेट्रो शहरों के भी हो गए।
yes.
और अब बारी आती है खेल जगत के समाचारों की।
Absolutely.
तो खेल जगत की ताजा तरीन जानकारी लेकर स्टूडियो पहुंच चुकी है हमारी सहयोगी फरत नाज। फरत, आज खेल खबरों की शुरुआत कहां से कर रही हैं?
जी हां मुकेश, आज खेल खबरों की शुरुआत हॉकी से। हॉकी इंडिया लीग में कल रात यूपी रुद्राज ने मौजूदा चैंपियन कलिंग लॉन्सर्स को 3-1 से हरा दिया। लॉन्सर्स के लिए एकमात्र गोल एनरिक गोंजालेज ने किया। गोंजालेज ने 13वें मिनट में गोल कर लॉन्सर्स को 1-0 से आगे कर दिया था, लेकिन 45वें मिनट में केन रसेल ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर स्कोर को बराबर कर दिया। बाद में 50वें मिनट में सुदीप चिरमाको के गोल से यूपी रुद्राज को 2-1 की बढ़त मिल गई। खेल के अंतिम मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर रसेल ने स्कोर 3-1 कर दिया। यूपी रुद्राज के गोलकीपर जेम्स मजारेलू को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इस जीत से यूपी रुद्राज अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि लांसर्स सबसे निचले पायदान पर है। लीग में आज राउरकेला में दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना हैदराबाद तूफान से होगा। ये मैच रात 8:15 से खेला जाएगा। वहीं भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इंग्लैंड के एक अन्य बल्लेबाज हैरी ब्रूक और श्रीलंका के कामिंदो मेंडीज को भी सूची में जगह मिली है। बुमराह 2024 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं। इन्होंने 13 मैच में 14.92 के औसत से 71 विकेट लिए हैं, जो पारंपरिक प्रारूप में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। फाइनल अगले वर्ष लंदन के लॉर्डर्स में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर पहली बार WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। प्रतियोगिता में पहुंचने वाली दूसरी टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं बात की जाए शतरंज की, तो विश्व रैपिड शतरंज का खिताब दूसरी बार जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद भारत की कोनेरू हम्पी आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रही फिडे विश्व बिल्ड्स चैंपियनशिप जीतकर दोहरी सफलता हासिल करने के इरादे से उतरेंगी। हम्पी इंडोनेशिया की इरिन सुकंदर को हराकर फिडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन बनी थी। हम्पी ने 2019 में जॉर्जिया में भी ये खिताब जीता था और दूसरी बार ये खिताब जीतने वाली चीन की जू वेंजुन के बाद दूसरी खिलाड़ी बनी थी। टूर्नामेंट के ओपन वर्ग में 13 जबकि महिला वर्ग में 11 दौर होंगे। बिल्ड्स वर्ग में भारत की डी हरिका का दावा भी मजबूत है जबकि प्रशंसकों को आर वैशाली और दिव्या देशमुख से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। मुकेश, आज खेल खबरों में फिलहाल इतना ही।
धन्यवाद फरहत। और अब कार्यक्रम में समय है मौसम की जानकारी का, तो सबसे पहले दिल्ली के मौसम की बात कर लें। शगुन,
डेफिनेटली स्टार्ट विद दिल्ली।
जी हाँ, दिल्ली में आज सवेरे काफी ठंड रही है, इसके साथ ही हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। रुख करें मुंबई का तो मुंबई में भी आज आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये बात हुई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। शगुन, आप बताएं कि चेन्नई और अन्य शहरों में कैसा रहेगा मौसम?
जी मुकेश, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। Now talking about Bengaluru, it is expected to have fog or mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 18 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Now talking about Hyderabad, it is expected to have partly cloudy sky with haze. The minimum temperature will hover between a minimum of 16 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 31 दिसंबर है, तो आज ही के दिन
जी लेट्स टेक आवर लिसनर्स वे बैक इन टाइम। इन द ईयर 1600 रॉयल चार्टर फॉर्म्स द ईस्ट इंडिया कंपनी, सेटिंग इन मोशन अ प्रोसेस दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द सब्जुगेशन ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। In the year 1744, English astronomer James Bradley announced the discovery of Earth's nutation motion.
और 1781 की बात करें तो आज के दिन अमेरिका में पहली बैंक, बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत हुई थी।
इन द ईयर 1802 पेशवा बाजीराव टू आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय यशवंतराव होलकर साइंड द ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलाउंस एंड एक्सेप्टेड सिक्योरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट।
1861 की बात करें तो आज ही के दिन मेघालय के चेरापूंजी में 22,990 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो विश्व में किसी भी स्थान पर होने वाली सर्वाधिक वर्षा है।
In the year 1879 now, Thomas Edison demonstrated incandescent lighting to the public for the first time. In the year 1911, Polish physicist Marie Curie received her second Nobel Prize in chemistry for a contribution to radioactivity.
1929 में आज ही के दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाहौर में पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन शुरू किया था। 1983 में आज ही के दिन ब्रुनेई को ब्रिटेन से आजादी मिली थी और 1984 में आज ही के दिन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी। बाद में वे भारतीय टीम के कप्तान भी बने थे। और 1988 की बात करें तो आज ही के दिन परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो 27 जनवरी 1991 से प्रभावी हुआ।
In the year 1997, Microsoft bought the popular email service Hotmail and relaunched it as MSN and MSN Hotmail. In the year 1999, the India Airlines Flight 814 hijacking ended in Kandahar with the release of 190 survivors. In 2019, in this particular year, the World Health Organization was first informed of mysterious pneumonia cases in Wuhan, China, which later turned out to be COVID-19 virus and sparked a global pandemic.
और 1998 में आज ही के दिन रूस ने कजाकिस्तान अंतरिक्ष केंद्र से 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया था। और आज सवेरे में वक्त हुआ है उन महान हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है, तो इस क्रम में सबसे पहले प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े को हम याद कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, उन्हें इतिहासाचार्य राजवाड़े के नाम से भी ख्याति प्राप्त थी।
Yes, his dedication to history was recognized posthumously with the creation of the Vishwanath Kashinath Rajwade Award, honoring individuals for their lifetime service to Indian history. Well, Mukesh, his legacy continues to inspire historians and researchers, underscoring the importance of primary sources in the study of history. His life was a testament to the power of scholarly rigor and the enduring impact of dedicated research ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ नेशंस पास्ट।
बिल्कुल, प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज तक की उच्च शिक्षा से संबंधित अपने अनुभव को राजवाड़े ने ग्रंथमाला मासिक पत्रिका में कनिष्ठ मध्यम और उच्च शालीनतीत स्वभाव शीर्षक निबंध द्वारा प्रस्तुत किया। इस रचना में उन्होंने शिक्षा की व्यावसायिक हितों को सामाजिक उत्तरदायित्वों पर वरीयता देने की तत्कालीन परंपरा की कठोर आलोचना की। 1894 में अनुवाद आधारित भाषांतर नामक मराठी पत्रिका संपादित करने के अलावा 1910 में उन्होंने पुणे में भारत इतिहास संशोधन मंडल की स्थापना की और अपने द्वारा इकट्ठे किए गए ऐतिहासिक स्रोतों, कृतियों और स्वयं द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों को मंडल के सुपुर्द कर दिया। और इसके अलावा हम आज याद कर रहे हैं
जी, लेट्स टॉक अबाउट
वीपी मेनन को, यानी राव बहादुर वप्पला पंगुमुन्नी मेनन को। जी हां, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रतिष्ठित अधिकारी थे और उनकी आज पुण्यतिथि है। भारतीय सिविल सेवा में एक क्लर्क की तरह अपना करियर आरंभ करने वाले मेनन ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जनरल के वैधानिक सलाहकार के पद तक पहुंचे और जब अंतरिम सरकार विफल रही तो मेनन ने ही भारत की विभाजन की सलाह दी थी। भारत के विभाजन और फिर रियासतों में एकीकरण में वीपी मेनन की प्रमुख भूमिका रही। सरदार पटेल के सहयोगी के रूप में भी वो याद किए जाते हैं। हैदराबाद, जूनागढ़ या फिर कश्मीर, सबकी कहानी में मेनन का नाम जरूर आता है।
जी मुकेश, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉन फ्लैमस्टीड द एस्ट्रोनॉमर। हिज हिस्टोरिया कोलेस्टिस ब्रिटानिका कंटेनिंग अ न्यू स्टार कैटलॉग ऑफ अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी एंड एटलस कोलेस्टिस कंटेनिंग सेलेस्टियल चार्ट्स वर पोस्टह्यूमस पब्लिकेशंस। He was a skilled observer and had a number of observing programs at the Royal Observatory to answer major questions, of course, related to space. Among his other achievements was the fact that he invented the conical projection, an important projection of sphere into a plane which is used in cartography.
और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज जयंती। इस क्रम में सबसे पहले लखनऊ जनपद के समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग लेखन के लिए विख्यात साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल को हम याद कर रहे हैं, आज उनकी जयंती है। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की, 1949 में राज्य सिविल सेवा से नौकरी शुरू की और 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में निवृत्त हुए और उनका विधिवत लेखन 1954 से शुरू होता है और इसी के साथ हिंदी गद्य का एक गौरवशाली अध्याय आकार लेने लगता है।
वेल मुकेश, ऑल्सो हिज वर्क राग दरबारी हैज बीन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश लैंग्वेज and a television serial based on this continued for several months on the national network in the 1980s.
बिल्कुल, विश्वनाथ त्रिपाठी ने हरिशंकर परसाई के लेखन को स्वतंत्र भारत की आवाज कहा है। श्रीलाल शुक्ल का स्वर मिला लें तो ये आवाज और प्रखर और पुख्ता होती है। वैसे तो वे पूरे भारत के थे लेकिन लखनऊ के खास गौरव थे। यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर के बाद रचनात्मक मानचित्र पर लखनऊ चमकता रहा तो इसका सबसे बड़ा श्रेय श्रीलाल शुक्ल को दिया जाता है। और उनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो सुनी घाटी का सूरज, आओ बैठ लें कुछ देर, अंगद का पांव, राग दरबारी, अज्ञातवास, आदमी का जहर, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो उन्होंने की थी।
डेफिनेटली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जियोवानी पास्कोली, इटालियन पोएट एंड क्लासिकल स्कॉलर। इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इटालियन डेकेडेंट पोएट्स। हिज वर्क रिमेन्स रेलिवेंट फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स लाइक नेचर, फैमिली एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ। हिज पोएट्री इज कैटेगराइज बाय इट्स म्यूजिकैलिटी एंड सिम्बोलिज्म, often drawing an imagery from the natural world to evoke profound emotional responses. He was a major figure in Italian literature, helping to usher in the era of Italian decadentism, while also laying the groundwork for later movements like modernism.
और भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी कृष्ण वल्लभ साहे की आज जयंती है। कृष्ण वल्लभ साहे 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे और आज ही भारत की प्रसिद्ध लोक कलाकार यमुनाबाई वाइकर की पुण्यतिथि जयंती है। उन्हें लावणी की क्वीन कहा जाता था। लावणी और तमाशा की मराठी लोक परंपराओं में अपनी विशेषज्ञता के लिए यमुनाबाई वाइकर जानी जाती थीं।
जी, ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट जूली स्टाइन, सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर, वाइडली नोन फॉर अ सीरीज ऑफ ब्रॉडवे म्यूजिकल्स। ही हैज कंपोज्ड ओवर 2000 सॉन्ग्स एंड पब्लिश्ड 1500 ऑफ देम एंड हैड समवेयर अराउंड 200 ऑफ देम बिकम इनॉर्मस हिट्स और लेटर सॉन्ग स्टैंडर्ड्स।
तो घड़ी की सुइयां शगुन इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए। तो अनुमति दें मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।